ओम शांति। बहुत सुंदर आपका सत्र कराने के लिए सकारात्मक चिंतन इस विषय पर प्रकाश डालने हेतु हमारे मध्य मोहन भाई जी उपस्थित हैं। आइए हम सुनते हैं सकारात्मक चिंतन इस विषय पर आदरणीय मोहन भाई जी से।
ओम शांति। अभी कुछ देर पहले आप सब लोग परमात्मा का परिचय और ईश्वर से योग लगाने की विधि उसका आनंद ले रहे थे। सबको परमात्मा का परिचय मिला ना? मिला। और कल जैसा कि हम सब लोगों ने सुना था, ये जो वर्ष है यह वर्ष ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक परिवर्तन वर्ष के रूप में मना रहा है। ईश्वरीय शक्ति द्वारा महापरिवर्तन उसका समय। वैसे तो परिवर्तन संसार का नियम है, हर क्षण परिवर्तन होता रहता है। अगला क्षण जो है इस क्षण से नहीं मिलता, और ये जो क्षण है ये पिछला जो बीत गया उससे नहीं मिलता। हर सेकंड में हर क्षण में परिवर्तन होता रहता है। और परिवर्तन का आधार क्या है? जैसा बहन जी अभी बता रहे थे, मनुष्य की सोच, विचारधारा। जैसा व्यक्ति विचार करता है वैसे ही उसके बोल निकलते हैं, कर्म करता है और परिवर्तन का अनुभव हम सब लोग करते हैं। तो हम सब चाहते तो हैं कि हम सब के अंदर सकारात्मक चिंतन हो, हमारी सोच अच्छी हो, किसी के लिए भी हमारे मन में निगेटिव फीलिंग ना हो, नकारात्मक विचार ना हो, हम भी सुख शांति में रहें, सारा संसार भी सुख शांति में रहे। लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा हो नहीं पाता है। क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हम अपनी सोच को वैसा नहीं बदल पाते जैसा हम कई बार चाहते हैं। और इस कारण से जब सोच में पूरा परिवर्तन नहीं ला पाते तो व्यवहार में परिवर्तन नहीं हो पाता। आज सुबह आपने शिविर किया ना, राजयोग शिविर, उसमें क्या सीखा आपने? क्या बताया? आप सब कौन हो? आत्मा। तो आत्मा जो है कौन है? इस आत्मा है राजा, सोल, द किंग। और आत्मा के तीन और कौन कौन सी आपने फैकल्टीज सुनी? आत्मा के कौन से तीन अंग हैं? है मन, बुद्धि, संस्कार। ठीक, आप तो एक दिन में ही बहुत एक्सपर्ट हो गए, सबको अच्छी तरह याद हो गया। और इसको और अनुभव भी करिएगा। तो आत्मा का एक अंग जैसे मन है। अब मन जितना फेथफुल होता है, हमारा आज्ञाकारी होता है, उतना हम खुशी का अनुभव करते हैं। लेकिन अक्सर करके देखा है मन हमारी आज्ञा में नहीं चलता। हम सोचते कुछ और हैं लेकिन करते कुछ और है। कह देते हैं, जैसे कल भी बात हो रही थी, मन भाई क्या करें, मन बड़ा चंचल है, भाग जाता है। आज के विषय में हम देखेंगे कि मन हमारा कैसे फेथफुल बने, हमारा आज्ञाकारी बने, कैसे हम मन को अपने वश में रखें, अपनी आज्ञा के अनुकूल चला सकें। क्योंकि मन जो है ना, वो है मंत्री, अगर आत्मा राजा है तो मन है उसका मंत्री। और मन के बाद दूसरी कौन सी चीज थी? बुद्धि। तो बुद्धि जो है ना वो है जैसे सेनापति, और बुद्धि जो है जितनी आज्ञाकारी के साथ साथ सरेंडर्ड होती है, यानी कि हमारी आज्ञा को मानती है, और बुद्धि जितनी समर्पित होती है, सेनापति भी समर्पित होना चाहिए। तो बुद्धि है सेनापति, और संस्कार वो क्या है? संस्कार है सैनिक। तो आत्मा राजा है, कोई भी राजा का काम कैसे चलता है? उसका मंत्री चलाता है, सेना होती है, सेनापति होते हैं, तब काम चलता है। लौकिक दुनिया में भी प्रधानमंत्री होता है, उसके दूसरे और मंत्री होते हैं, छोटे मंत्री होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, तो सब काम चलता है। ऐसी आत्मा राजा का मन मंत्री है, बुद्धि सेनापति है, संस्कार जो है सैनिक है। लेकिन आज बस ऐसा हो गया है कि न मन मंत्री हमारी बात मानता है, वो ज्यादा शक्तिशाली हो गया, न बुद्धि जो सेनापति है वो हमारे कहने पर चलती है, और न हमारे संस्कार। हम अक्सर कह देते हैं क्या करें भाई, कोई तेज बोल रहा है, भाई मेरा तो ये संस्कार है तेज बोलने का, मैं क्रोध करना नहीं चाहता, क्रोध आ जाता है, बस मेरा तो ये पुराना संस्कार है। हम संस्कारों को दोष दे देते हैं, लेकिन आत्मा राजा कमजोर हो गई है इसलिए मंत्री स्ट्रांग हो गया है। तो आज हम देखेंगे कि आत्मा राजा को कैसे हम फिर से अपनी उस स्वस्थिति में ला सकें जिससे आत्मा राजा फिर से शक्तिशाली हो जाए, और उसके अंदर फिर से मन बुद्धि संस्कार जो मंत्री सैनिक आदि हैं वो उसके अंडर में रह सके। तो आज के इस विषय में हम ये देखते चलेंगे, और ये तभी होगा जब आत्मा राजा जो है फिर से शक्तिशाली बनेगा। जब मंत्री शक्तिशाली हो जाता है, कई बार सेनापति शक्तिशाली हो जाते हैं तो राजा को उठा के जेल में डाल देते हैं और राजा उनके वश में हो जाता है, और अगर राजा शक्तिशाली होता है तो ये सब उसमें चलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से हम आत्मा राजा को शक्तिशाली बना सके। अब ये जब मन है तो मन का क्या काम है, आज आपको बताया गया होगा। मन क्या करता है, क्या काम है मन का? मन का काम है सोचना। बस जैसे पानी है, कहीं तालाब में पानी पड़ा है, आप छोटा सा पत्थर डाल दो, लहरें पैदा होने लगेंगी। ऐसी मन के अंदर भी विचारों की लहरें पैदा होती हैं, और विचार बहुत प्रकार के आते हैं। जब ये विचार बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो कई बार स्ट्रेस, आज आपको बताया गया होगा ना कितने विचार आते हैं मन के अंदर, कितने विचार आते हैं, हाँ कितने, बहुत विचार आते हैं। नॉर्मल केस में 2 सेकंड में एक विचार आ जाता है, हर 2 सेकंड में एक विचार। तो कितने विचार हो गए, 1 मिनट में कितने विचार हो गए, लगभग 30 विचार, और सारे दिन भर में 25-30 हजार विचार आ जाते हैं। तो मन का काम है सोचना। बहुत ज्यादा विचार आते हैं तो कई बार मन बहुत परेशान, आप सब अनुभव है, कोई घटना हो गई, किसी ने आपका अपमान कर दिया, कोई ऐसी बात हो गई जो आपको प्रिय नहीं है, आपके बहुत विचार चलेंगे, सोना भी चाहेंगे, नींद नहीं आएगी, लेटे रहेंगे, लेकिन विचार चलते रहेंगे। नॉर्मली मन में जो विचार चलते हैं वो पॉजिटिव कम चलते हैं, नेगेटिव ज्यादा हो जाते हैं, अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या द्वेष। तो इसमें देख रहे हैं आप कि जो विचार कोने वाले होते हैं, जैसे मेज है या कोई कोने वाली चीज होती है, उसके पास से निकलेंगे तो कोना लगेगा तो कट जाएगा, कपड़ा फट जाएगा, थोड़ा स्क्रैच आ जाएगा। तो ये विचार नॉर्मल केस में होते हैं, लेकिन जब व्यक्ति ज्ञान योग करता है, अभी आप यहाँ आए हो, दो तीन दिन ज्ञान योग सब सीखेंगे, उसके बाद आपके विचार भी स्मूथ, जो दूसरी तरफ बताए हैं, एकदम जहाँ कोने नहीं, बहुत स्मूथ विचार हो जाएंगे, जिससे कि दूसरे को, उससे सबको, अपने को भी और दूसरों को भी सुख मिले। ये पॉजिटिव विचार है जो कि स्मूथ के रूप में दिखाए गए हैं। मन के बाद दूसरी चीज है बुद्धि। अक्सर करके कई बार ये होता है, हम निर्णय नहीं ले पाते हैं, ये ठीक है या ठीक है, ये करूं या ना करूं, ऐसा करूं या वैसा करूं, कई बार मन के अंदर दुविधा आ जाती है। उसे तराजू के रूप में दिखाया गया है, टेढ़ा तराजू। लेकिन जब ज्ञान और योग आप यहाँ पर जो अभी सीख रहे हैं, उसके बाद से आपका निर्णय लेने की शक्ति इतनी पक्की हो जाएगी कि आप जल्दी ही और सही निर्णय ले सकेंगे। सही समय पर सही निर्णय लेना, ये सफलता की निशानी है। तो ये बुद्धि इस प्रकार से हो जाएगी। और संस्कार कैसे हो जाएंगे, जैसे आप में से पुराने जमाने में ना, आजकल तो सीडी डीवीडी और ये सब बन गए हैं, इससे पहले कैसेट वगैरह, लेकिन आज से 25-30 साल पहले, 40 साल पहले पुराने जमाने में रिकॉर्ड होता था। हाँ, ग्रामाफोन बोला करते थे, हिज मास्टर्स वॉइस करके भी होता था। हाँ, जिन्होंने उस रिकॉर्ड को देखा है, जिसके ऊपर रिकॉर्ड के ऊपर सुई रख देते थे, साउंड बॉक्स, रिकॉर्ड घूमता था और उसमें से आवाज निकलती थी, जिन्होंने उसे देखा है वो जरा हाथ खड़ा करें। अच्छा, काफी ज्यादातर ने तो देखा हुआ है पुराने जमाने का रिकॉर्ड। तो वो संस्कार, तो ये रिकॉर्ड जो है ना, ये जैसे संस्कार की तरह है। इसमें क्या होता है, जब आपने देखा होगा रिकॉर्ड पुराना हो जाता था, हाँ, कई बार घिस जाता था तो सुई उसमें फंस जाती थी, तो बार बार वही आवाज निकलती थी। ऐसे ही कई बार ऐसा होता है कि हम चाहते तो नहीं कोई पुरानी बात को याद करना, लेकिन बार 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 वो पुरानी बात याद आती है, किसी ने गलत शब्द कह दिए, अपमान कर दिया, वो याद आता है, ऐसी घटनाएं याद आती हैं दुख वाली जो हम नहीं चाहते, तो वो जब आते हैं तो मनुष्य को दुख होता है। और उन संस्कारों को जब हम बिल्कुल स्मूथ बना देते हैं, जैसा बताया गया है, एकदम स्मूथ हो जाते हैं, तो फिर रिकॉर्ड हमारा संस्कार ठीक चलते हैं, वो सुखदायी संस्कार हो जाते हैं। तो इन सब का आधार है सोचना। अगर सोचना हमारा सकारात्मक हो गया, निर्णय करना भी सकारात्मक हो जाएगा, संस्कार भी सकारात्मक हो जाएंगे, व्यवहार भी सही अच्छा हो जाएगा और जीवन सुखदायी और शांतिमय बन जाएगा। तो इसीलिए सारा निर्भर करता है मनुष्य के अपने विचारों के ऊपर, सोचने की कला के ऊपर। क्योंकि आज हम सब जो है ना, जैसे एक मकड़ी के जाले में फंस गए। मकड़ी होती है ना, देखा होगा घर में, पुरानी जगह बहुत दिनों तक वो हो तो मकड़ी जाला बना लेती है, और जाले में बस कोई भी कीड़े वगैरह आते हैं, फंसते हैं, वो मकड़ी का भोजन बन जाते हैं। ऐसे ही हम सब ने भी ना, बचपन में जब हम पैदा हुए थे, कितना खुशनुमा जीवन था, छोटा बच्चा देखो मुस्कुराता है, कोई बंधन में नहीं होता। लेकिन धीरे धीरे जैसे बड़ा होता चला जाता है, अनेक प्रकार के बंधन में वो बनता जाता है। क्रोध भी आएगा, ईर्ष्या, द्वेष, झगड़ा करना, झूठ बोलना आदि आदि, सब वो जंगल में फंसता जाता है। ऐसे ही हम सब आत्माएं भी वास्तव में इस प्रकार से विकारों में, ये आज का मनुष्य है। और ये आज का मनुष्य फिर से देखो बेचारा कैसे नाच रहा है, आज का मनुष्य ना, ये ऐसे अपने ही बनाए हुए बंधनों में फंसता जाता है। और ये बंधन क्या है? ये है उसके कमजोरियां, मनोविकार, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है, तो बहुत सारे छोटे बड़े, लेकिन मुख्य रीति से ये पांच विकार दिखाए गए हैं। इनके वशीभूत हो जाता है तो ही नकारात्मक चिंतन मनुष्य का चलता है, निगेटिव थिंकिंग चलती है। और जब आज का मनुष्य इन चीजों से निकलता है, कोई चीजों से कैसे निकल सकता है? मानो आप मोबाइल यूज करते हो, मोबाइल जब यूज करते करते डिस्चार्ज हो जाता है तो उसकी बैटरी को चार्ज करने के लिए आप क्या करते हो? उसे प्लग लगा देते हैं मेन पावर हाउस में, बिजली का कनेक्शन कर देते हैं, फिर से चार्ज हो जाता है, फिर से उसे सारा दिन यूज कर सकते हैं। ऐसे ही आत्मा रूपी बैटरी जब ये डिस्चार्ज हो जाती है, शक्तिहीन हो जाती है, कमजोरी हो जाती है, तो उन सबके वशीभूत हो जाती है काम क्रोध। और उसको चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ये परमपिता परमात्मा उस मेन पावर हाउस से आत्मा रूपी बैटरी को लगाना होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले पिछले सेशन में आप कर रहे थे ना, शुद्ध संकल्प में आत्मा हूँ, परमात्मा प्यार का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है। तो ये आत्मा का परमात्मा से जब कनेक्शन होता है तो आत्मा भी प्रेम, शक्ति, आनंद, पवित्रता, सुख, ज्ञान, इन सब की लाइट आती जाती है और आत्मा शक्तिशाली होती जाती है। और जब आत्मा शक्तिशाली हो जाती है तो क्या होता है? हम जैसे अपने बनाए हुए जाले में, बंधन में, धीरे धीरे अनुभव करते हैं कि हम उन बंधनों से निकलते जा रहे हैं। और ये जो हमारी कमजोरियां हैं ना, जिन्होंने हमें बांधा हुआ था, ये कमजोरी और मकड़ी का जाला बंधन अलग हो गया, हम स्वतंत्र आत्मा हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती हैं, और फिर मनुष्य के जीवन में सकारात्मक चिंतन चलना बड़ा सहज हो जाता है। तो यहाँ पर आप आए हो, दो तीन दिनों में आपको ये प्रयास किया जाएगा कि आप ये जो बंधन बनाए, तो यहाँ पर आप क्या करना, अभी दो तीन दिन तक अपने पुरानी बातों को याद ही नहीं करना, घर को याद नहीं करना, बच्चों को याद नहीं करना, बिजनेस को, नौकरी को, धंधे को, वो सब बंधन जो हैं, उन सब को दो दिन के लिए बिल्कुल भूल जाओ। इसलिए कहते हैं भाई मोबाइल को भी आप स्विच ऑफ रखेंगे, उतना भूले रहेंगे उतना अच्छा। तो क्या होगा? आत्मा रूपी बैटरी आपकी चार्ज हो जाएगी और बस इस बंधनों से निकलते चले जाएंगे और आत्मा शक्तिशाली होकर ऐसे होती जाएगी जीवन में, जैसे कि आप शक्ति का भंडार हो, एकदम ऐसा अनुभव होगा। अब उसकी विधि आपको बताई जाती है कैसे आपका सकारात्मक चिंतन चले। चिंतन तो ये हमारा जीवन है ना, बस आप कहाँ पर आए हो? कल बहन जी बता रहे थे ना, आप ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए हो, विद्यालय में पढ़ने के लिए। तो इसीलिए जब विद्यालय में पढ़ने के लिए आए हो तो ये जीवन, लाइफ चार अक्षर का है, LIFE, जीवन के लिए बहुत कुछ कहा है लोगों ने कि जीवन एक बगीचा है, जीवन एक सड़क है, जीवन एक चैलेंज है, इसको पार करो। जिसने जिस दृष्टिकोण से जीवन को देखा, नकारात्मक था और निगेटिव, तो उसने निराशावादी दृष्टिकोण से देखा, निराशावादी हो जाता है व्यक्ति। कोई आशावादी दृष्टिकोण से देखता है, वो आशावादी हो जाता है। तो ये, लेकिन जीवन की सच्ची परिभाषा यह है कि यहाँ पर प्रोफेसर आए थे, उन्होंने जीवन को अपनी रीति से परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि जिंदगी है एक सेंटेंस, लिखते हैं ना सेंटेंस, जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो। जिंदगी है एक सेंटेंस, इसे खुद ही समझो। जवानी डैश बुढ़ापा कॉमा, मौत को फुल स्टॉप समझो। सेंटेंस होता है ना, डैश होगा, कॉमा होगा, फुल स्टॉप होगा, तो उस रीति से भाई जिंदगी को सेंटेंस की तरह कर दिया। तो ये एल आई एफ ई ये जीवन के दो पहलू दर्शाता है। एल आई यानी लुक इंटरनली, एक जीवन का आंतरिक पक्ष है, आध्यात्मिक पक्ष जो आपको अभी बताया गया, और दूसरा जीवन का है एफ ई फॉरवर्ड एक्सटर्नली, यानी हर मनुष्य जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ऊपर उठना चाहता है, ज्यादा मकान हो, ज्यादा पैसा हो, ज्यादा प्रतिष्ठा हो, ज्यादा अच्छे संबंध हो। तो ये जीवन के दो पहलू हैं, एक है आंतरिक पक्ष, एक है बाहरी पक्ष। बाहरी पक्ष तो हम सब जानते हैं, नौकरी धंधा पैसा परिवार ये सब बढ़ाना, लेकिन इस प्रोसेस में बाहरी पक्ष में जीवन में कई बार निराशा तनाव डिप्रेशन बहुत सारी चीज आती है, तो आंतरिक पक्ष भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है, ये आवश्यक है। तो ये चार अक्षर का शब्द देख रहे हैं ना, एल आई एफ ई, लुक इंटरनली फॉरवर्ड एक्सटर्नली। इसके बीच के दो शब्द क्या है लाइफ के, एल आई एफ ई, बीच के दो शब्द हैं क्या है, इफ आई एफ, इफ इफ यानी यदि, काश। बस कई बार हम पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, यदि ऐसा नहीं होता ये कर लेते, उस मैंने ये नहीं बोला होता ऐसा रिजल्ट हो जाता, पुरानी बात को याद कर लेते हैं, कहीं उससे संबंधों में कटुता हो गई, अरे मैंने क्रोध कर लिया इस वजह से ऐसा हो गया। आई एफ इफ, तो आधी जिंदगी, चार में से दो अक्षर, आधी जिंदगी हमारी पुरानी बातों को याद करने में ही बीत जाती है। तो यदि हम सकारात्मक चिंतन चाहते हैं तो पुरानी बात को हम बिल्कुल फुल स्टॉप लगा दें, भूल जाए। पुराने जमाने में कबीर दास जी होके गए हैं, सुना है ना कबीर दास जी का नाम, और घर में पहले पुराने जमाने में माताएं चक्की गेहूं मसाला पीसने के लिए चक्की चलाते थे, चक्की में दो पार्ट होते थे और चक्की चलाते थे, बीच में डाला पीस करके निकल जाता था। तो कबीर दास जी ने बोला है कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई। तो जीवन के भी दो पार्ट क्या है, एक है भूतकाल एक है भविष्यकाल। या तो हम भूतकाल का चिंतन करते रहेंगे, ये क्यों हुआ कैसे हुआ नहीं होना चाहिए था, या तो भूतकाल का चिंतन या भविष्य की चिंता, अरे अभी तो घर का मकान बनाना है, लड़की की शादी करनी है, लड़के को पढ़ा के पैरों पर खड़ा करना है, तो भविष्य की चिंता होगी या भूतकाल का चिंतन होगा, इन दोनों में मनुष्य फिस जाता है बेचारा, क्या करे फिर। तो दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, और खूंट पकड़कर जो रहा उसे पीस सका न कोई। बीच में वो होता है ना खूंटा जैसा, जिसके चारों तरफ पार्ट घूमते हैं, है? पुराने जमाने की चक्की देखा तो होगा यहाँ माताओं बहनों आप लोगों ने, जिन्होंने ऐसी पुराने जमाने की चक्की देखी है वो जरा हाथ खड़ा करें, हाँ ज्यादातर ने तो देखी हुई है। तो बीच में अनाज साबुत रह जाता था, वो पिसता नहीं था, तो वो है वर्तमान काल। तो सकारात्मक चिंतन की कला एक ये है कि हम सदा वर्तमान में जिए, हाँ भूतकाल से हम लेसन लें सबक सीखें भविष्य की प्लानिंग करें, लेकिन भूतकाल और भविष्य काल का चिंतन न करके वर्तमान में जिएंगे। इसीलिए वर्तमान को क्या कहा जाता है, प्रेजेंट गिफ्ट, प्रेजेंट माने गिफ्ट। आप मैरिज पार्टी में जाओ बर्थडे पार्टी में जाते हैं तो प्रेजेंट ले जाते हैं ना, तो ऐसे ही वर्तमान जो है हमारा प्रेजेंट है, इसलिए हमेशा वर्तमान में जीना सीखो। तो ये जो कला बता रहे हैं सकारात्मक चिंतन की, पहली कला बताई कि जीवन के दो पहलुओं में जियो, आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष। बाहरी में तो आप जानते ही हो सारा नौकरी धंधा परिवार सलाना, लेकिन थोड़ा समय आंतरिक पक्ष यानी कि घर में ध्यान के लिए योग के लिए, उसके लिए भी कम से कम आधा घंटा रोज जरूर निकालो। तो वर्तमान आंतरिक पक्ष और बाहरी पक्ष दोनों मजबूत हो जाएंगे तो बस। इसीलिए कहा गया लाइफ है, चार दिन की जिंदगी है, LIFE, तो लर्निंग होता है, सीखना होता है आदि आदि। तो इस रीति से सकारात्मक चिंतन के लिए ये दो तीन बातें सीखी। कौन सी दो तीन बातें? पहली तो ये कि दोनों पहलुओं में जियो, भूतकाल को भूलते जाओ, वर्तमान में सदा जियो और भूतकाल से लेसन लो, पुरानी जो बात है उनसे सबक सीखो और भविष्य का प्लानिंग करो, आगे करके करते रहेंगे। तो ये सकारात्मक चिंतन के कुछ नियम है जो आपको बताते जाते हैं। और क्या होना चाहिए साथ में जीवन में? मनुष्य का मन जो है ना, बताया ना, मन में सोचने की कला है, इसीलिए मन को ही कहा गया है। क्या कहा है? कल बताया जा रहा था ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जी। बस मन हमारा इतना वश में हो जाए कि हम जैसा चाहे मन उस प्रकार से चिंतन करे, इसीलिए मन। और इसीलिए कहा गया है भाई ये संसार तो एक भव सागर की तरह है, अब भव सागर में हम सब इस भव सागर में तैर रहे हैं, तो मन रूपी घोड़ा वो इसमें ये बताया गया है। तो ये भव सागर में हम सबको भव सागर ये पार करना है। नाव होती है ना, नाव में अगर बस चलती जाती है नाव पानी में, अगर ठीक है, अगर नाव में छेद हो जाता है तो बस पानी भर जाता है। इसी तरह हम संसार में रहें, संसार को छोड़ना नहीं है, हम संसार में रहें लेकिन संसार हमारे में ना रहे। क्या होता है, सारी दुनिया भर का चिंतन चलता है, उसने ये कर दिया, ऐसा हो गया, जिन चीजों से हमारा ज्यादा संबंध भी नहीं है उन सब बातों को सोचते सोचते मनुष्य बिल्कुल परेशान हो जाता है, थकान अनुभव करता है। और इस कारण से भवसागर के अंदर मनुष्य डूबता चला जाता है। तो ये भवसागर है, इस भवसागर संसार रूपी भवसागर से यदि पार जाना है तो उसके लिए और क्या क्या करना पड़ेगा? मन को अच्छी तरह और समझना पड़ेगा। मन क्या है? मन एक बहुत बहुत बड़ी शक्ति है और ये शक्ति एनर्जी है, बस एनर्जी शक्ति। अभी देखो यहाँ पर बिजली है, माइक भी चल रहा है, पंखा भी चल रहा है, लाइट भी जल रही है, सब कुछ है। अभी ये सब कुछ रहेगा ऐसे ही, अगर बस थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए, फ्यूज हो जाए, कनेक्शन डिसकनेक्ट हो जाए, कुछ भी नहीं चलेगा। बल्ब होंगे, लाइट नहीं रहेगी, पंखा होगा, चलेगा नहीं, सब कुछ होगा लेकिन काम नहीं करेगा। ऐसी आत्मा भी एक शक्ति है, और जैसी आत्मा ये शक्ति निकल जाती है, सब कुछ होते हुए भी शरीर का कोई अंग कार्य नहीं करता। इसीलिए आत्मा का जो एक मुख्य अंग है ना, उस अंग को पहचान करके ये चलना चाहिए। आई मैं, तो ये जो मैं है ये ही विचारों का प्रतिनिधित्व करता है, ऐसा देखा गया है। सारे दिन भर में हम कौन से दो अक्षर सबसे ज्यादा बोलते हैं? है? मैं और मेरा। सारे दिन भर में आप देखो मैं और मेरा, ये अक्षर सबसे ज्यादा मनुष्य बोलता है। और इस कारण से ये मैं रिप्रेजेंट करते हैं, मैं क्या है? अपने आत्मा के लिए मैं ये कर रहा हूं, मेरा माने ये शरीर, मेरा शरीर बोलते हैं ना, मेरी आंख, मेरे कान, यानी कान अलग है, जैसे बोलते हैं मेरा चश्मा, चश्मा अलग है, मैं अलग हूं, ऐसे ही मेरा कान, यानी कान अलग है, मैं अलग, मेरा शरीर, शरीर अलग है, मैं आत्मा। तो ये पाठ आप पक्का करते जाएंगे कि मैं आत्मा इस शरीर में विराजमान हूं, तो सकारात्मक चिंतन बड़ा सहज हो जाएगा एकदम। कैसे सहज होता चला जाएगा इसके अंदर? क्योंकि मन में सारे दिन भर में बहुत प्रकार के विचार आते हैं, कितने प्रकार के विचार आते हैं आज आपको बताया गया होगा ना सुबह क्लास में, कितने प्रकार के विचार आते हैं है? हाँ बताइए, कोई बताए, लिखा भी होगा। देखो मन के अनेक काम हैं, एक मन का काम है सोचना, थिंक। दूसरा मन का काम है फील करना, महसूस करना। किसी ने हमारा अपमान कर दिया, निरादर कर दिया, हमें दुख की महसूसता हो गई। किसी ने प्यार दिया, सत्कार दिया, आदर दिया, सुख की महसूसता। मन का काम है फील करना, तो सोचना, महसूस करना। मन का तीसरा काम है इमेजिन, कल्पना करना। अभी आप यहाँ बैठे हो, शरीर यही है, लेकिन बैठे बैठे ही मन से आप अपने घर में, बंबई में, कल या जहां से भी आप आए हो वहां का विचार कर सकते हो। मन, इसी ने कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव वो चीज जो है ना, वो आपको कहीं से कहीं भी पहुंचा देती है। तो इमेजिन, कल्पना करना। यहां पर बैठे हैं, बस आपने कल्पना की अपने बच्चे की, पोते की, और बस उसकी छवि आपके सामने आ जाएगी, और बस आप मानसिक रूप से उसके पास पहुंच जाएंगे। तो ये मन का काम है। और मन का चौथा काम क्या है? विचारों का निर्माण करना, सोचना, जैसे नए नए विचार। तो ये मन के कार्य हैं। तो इनको हम किस रीति से महसूस करते हैं, किस रीति से काम में लाते हैं, ये हमारे मन की शक्ति पर निर्भर करता है। अज्ञान और योग के द्वारा वो शक्ति का हम और निर्माण कर सकते हैं, उसको और बढ़ा सकते हैं। इसीलिए मन का क्या है, जो अलग अलग प्रकार के विचार करता है ना मन, ये देख रहे ना आप, तो मन के अंदर ये न्यूरॉन्स होते हैं, ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जैसे उसके अंदर आते हैं, और मन आत्मा के अंदर यहाँ रहता है, आत्मा यहाँ रहती है, आत्मा का एक हिस्सा मन है, और मन में अनेक प्रकार के विचार आते हैं। तो क्या विचार? एक है पॉजिटिव थॉट्स, सकारात्मक चिंतन जो हम जानते हैं। तो सकारात्मक चिंतन कौन सा है? आज सुबह आपको बताया होगा ना, कौन सा है सकारात्मक चिंतन? आत्मा के जो सात गुण और शक्तियां बताई गई हैं, कौन से सात गुण आत्मा के बताए हैं आज आपको? हम बोलिए, सुबह सुबह पहले लेसन में बताए होंगे ना, शांति और सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान, शक्ति, ये जितने हैं ये सब आत्मा के गुण हैं। ये इनके द्वारा जो भी चिंतन होता है वो सकारात्मक होता है। किसी को हम सुख देने की बात करते हैं, सकारात्मक। प्रेम से बात करो, सकारात्मक। ज्ञान की बात करो, आनंद की बात करो, शक्ति की। और इसके विपरीत जो इसके उल्टे है, सुख की बजाय दुख की बात, वो नकारात्मक चिंतन। और प्रेम की बजाय घृणा, ईर्ष्या के विचार, वो नकारात्मक चिंतन। तो नेगेटिव थॉट्स सब जानते हैं आजकल की दुनिया में कितने विचार चलते हैं। तीसरे विचार हैं वेस्ट थॉट्स, यानी व्यर्थ विचार, जो पास्ट के हो गए विचार, जिन विचारों पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, लेकिन बार बार उन्हीं बातों को याद करना, वो है व्यर्थ चिंता। और चौथे प्रकार के विचार हैं आवश्यक विचार, भाई नौकरी पे जाना है, धंधा करना है, घर में बच्चों को तैयार करना है, सफाई करनी है, खाना बनाना है, आवश्यक जरूरी विचार, ये विचार है। तो अब धीरे धीरे आप चेक करते जाना, जब आप वापस जाओ कि चार प्रकार के जो विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव विचारों को बढ़ाते जाना, सकारात्मक विचारों को। आवश्यक विचार तो आप करते ही हो, लेकिन नेगेटिव विचार और व्यर्थ विचारों को कम करते जाना, सकारात्मक विचारों को बढ़ाते जाना। तो ये सकारात्मक विचार और कैसे बढ़ते हैं, विचारों का पता कैसे चलेगा, सकारात्मक विचार कैसे बढ़ेंगे? स्पीड के द्वारा। यानी कि अपनी गति कैसी है। अभी आप थोड़ी देर पहले जब लाल लाइट जल रही थी, उषा बहन जी योग करा रहे थे, कितने कम विचार आ रहे थे। वो धीरे धीरे बोल रहे थे, भाई मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, परमात्मा शांति का सागर है, तो कम विचार आ रहे थे ना। ये विचार जो होते हैं, कम विचार जो ये हैं, पॉजिटिव विचार कम आएंगे, विचार धीरे धीरे आए। फिर थोड़े पॉजिटिविटी कम हो गई, साधारण विचार होंगे उनसे थोड़ा ज्यादा तेजी से आएंगे, जो व्यर्थ विचार होंगे और तेजी से आएंगे, और निगेटिव विचार जो होंगे इतने ज्यादा तेजी से आएंगे कि आपको स्ट्रेस में, चिंतन में, उसमें डाल देंगे और तनाव पैदा हो जाएगा। अभी जैसे आप यहाँ पर बैठे हो, हैं? विचारों की संख्या पर भी बहुत निर्भर करता है। अभी इसमें आप देखेंगे जीवन के अंदर वास्तव में हमारा दृष्टिकोण कैसा है। कोई भी चीज अच्छी या बुरी नहीं होती है, लेकिन हम किस दृष्टिकोण से उसे देखते हैं वो हमें अच्छा या बुरा उस चीज को बना देती है। ये हमारे देखने का ढंग ढर्रा होता है, ढंग होता है। अगर मैंने लाल चश्मा पहना है मुझे सब लाल लाल नजर आएगा, नीला चश्मा पहना है नीला नीला नजर आएगा। ऐसे ही अगर मेरा दृष्टिकोण पॉजिटिव होगा तो हर चीज मुझे पॉजिटिव, दूसरे व्यक्ति में भी मुझे गुण नजर आएंगे। अगर मेरा दृष्टिकोण निगेटिव होगा तो हर व्यक्ति में मुझे कुछ ना कुछ कमी कमजोरियां, निगेटिविटी ही नजर आती रहेगी। इसीलिए आवश्यकता यह है कि अपने दृष्टिकोण को भी बदलें। और जैसे रात होती है ना, रात में क्या होता है, रात है आपको तारे नजर आएंगे, बस हल्के हल्के सब तारे, पूरा आसमान जैसे तारों से भरा हुआ है। और जब दिन हो जाता है तो तारे नजर नहीं आते। क्यों? इसका भाव क्या है जीवन में कि जब रात होती है, जीवन की रात, यानी कोई परीक्षा आई, परिस्थिति आई, पेपर आया, कोई चैलेंज आया लाइफ के अंदर, उस जीवन की रात के अंदर हमारे अंदर जो तारे यानी शक्तियां हैं उनको अपने को प्रदर्शित करने का मौका मिलता है। हम अपनी शक्तियों को पहचानते हैं। जब when you are fighting with the back to the wall, then you realize how much energy you are having. अर्थात जब जीवन की रात अंधियारा परीक्षा हो तो उस समय उस नेगेटिव परिस्थिति में आपको मौका मिलता है अपने अंदर की पॉजिटिव शक्तियों को देखने का। और जब दिन हो जाता है, सूरज है, जब परिस्थितियां अच्छी होती हैं, तब हम अपनी शक्तियों को नहीं पहचान पाते। निगेटिव परिस्थिति में भी हमें पता चलता है मेरे में सहन शक्ति है, सही समय पर सही निर्णय करने की शक्ति है। तो जीवन में कभी अगर पेपर आए, परिस्थिति आए, प्रॉब्लम आए, तो उस चीज से हम घबराए नहीं, वो हमारी डिसीजन मेकिंग पावर को, निर्णय लेने की शक्ति को शार्प करती है, तेज आगे और बढ़ाती है। इस कारण से उसके अंदर हमेशा हर परिस्थिति में ये समझना चाहिए कि इस परिस्थिति मुझे सिखाने आई है। जैसे कोई होता है ना, अब मैं आपके घर में गया, आपने मुझे पानी दिया, धूप में मैं आया हूँ, आधा गिलास पानी दिया, तो बस। अब मैं उसे दो दृष्टिकोण से सोच सकता हूँ, भाई मैं सोचूं, अरे आधा खाली, इन्होंने आधा ही पानी भर के दिया, तो अगर मैं खाली हिस्सा देखूंगा तो ये मेरे जीवन में ना निगेटिव दृष्टिकोण और बढ़ाता जाएगा। अरे ये पूरा भर के देते तो और भी अच्छा होता, मैं ज्यादा अपनी प्यास बुझा सकता था। और इसके विपरीत यदि मैं भरे हुए हिस्से को देखता हूँ, ओहो पानी आधा भरा हुआ, इससे मैं अपनी प्यास बुझाऊंगा, बहुत उससे प्रसन्न हो जाते हैं, वो है जीवन का सकारात्मक चिंतन। देखिए आप इसमें कौन सा खुश लगता है, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला। जिसका सकारात्मक चिंतन अगर चलेगा वो जीवन में सदा खुश रहेगा, आनंद में रहेगा। और नेगेटिव चिंतन चलेगा, दूसरे को तो दुखी देगा ही, खुद भी दुखी होगा। खुद मानो मैंने क्रोध किया, जिस पर क्रोध किया वो तो दुखी हुआ ही, लेकिन जिसने क्रोध किया वो भी सुखी नहीं रहता। क्रोध का शुरुआत हमेशा आवेश से होती है और क्रोध का अंत सदा पश्चाताप से होता है। हमेशा पश्चाताप होगा, मैंने क्यों क्रोध किया, क्यों अपनी एनर्जी इतनी वेस्ट की। तो जीवन में हमेशा दृष्टिकोण पॉजिटिव होना चाहिए, सोचने की कला पॉजिटिव। मुझे एक प्रोफेसर साहब की बात याद आती है। एक प्रोफेसर साहब थे, वो स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे मेडिकल कॉलेज में कि शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं। तो पहले उन्होंने लेक्चर दिया शराब पीने से क्या नुकसान होते हैं, फिर उन्होंने स्टूडेंट्स को एक एक्सपेरिमेंट करके बताया। एक गिलास लिया, उसमें पानी था, कांच का गिलास था। उन्होंने छोटा सा एक कीड़ा पकड़ा, पानी में डाला, पानी में वो कीड़ा तैरता रहा, चलता रहा। थोड़ी देर बाद कीड़े को निकाला, फिर मेज पर रखा, कीड़ा स्वस्थ था, उसे कुछ भी नहीं हुआ था, वो फिर चलने लगा। फिर प्रोफेसर साहब ने एक दूसरा गिलास लिया जिसके अंदर एल्कोहल थी, शराब थी। तो कांच का ही गिलास था, प्रोफेसर साहब ने उस कीड़े को शराब में डाला, कीड़ा गया अंदर, अंदर जाके थोड़ा झूमने लगा। शराब थी, बड़े बड़े लोग पी के झूम जाते हैं, ये तो छोटा कीड़ा था, एक दो बूंद उसके पेट में भी चला गया होगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद वो कीड़ा एकदम शांत हो गया। प्रोफेसर साहब ने उसे हिलाया, कीड़े में कोई जीवन नहीं था, कीड़ा मर गया था। और केवल मरा ही नहीं, उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े होने लगे, घुलने लगा शरीर, इतना तेज शराब का इफेक्ट कीड़े के ऊपर। तो प्रोफेसर साहब ने ये एक्सपेरिमेंट दिखा के स्टूडेंट से पूछा, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है। तो बड़ा सिंपल एक स्टूडेंट ने हाथ खड़ा किया कि हाँ बताओ क्या शिक्षा मिलती है। कि सर इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि यदि हम शराब पियेंगे, अल्कोहल का सेवन करेंगे, तो हमारे पेट के सब कीड़े मर जाएंगे और हम हेल्दी रहेंगे। ये सोचने का ढर्रा है। जैसा मनुष्य सोचता है ना, गीत भी सुन रहे थे, जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। तो इस रीति से सोचने के साथ साथ मनुष्य का वैसा ही विचारधारा चलती है। तो ये जीवन का दृष्टिकोण, इसीलिए दृष्टिकोण हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो विचार भी पॉजिटिव होंगे, व्यवहार, पूरा जीवन ही पॉजिटिव होता जाएगा। और क्या साथ में करना चाहिए इसके लिए, क्या करें इसके लिए? कहा जाता है मछली होती है ना, मछली कांटे में कब फंसती है? मछली को पकड़ने के लिए जाते हैं ना बंगाल में तो ज्यादा, तो मछली कांटे में कब फंसती है? जब मुंह खोलती है। मुंह ही नहीं खोलेगी फंसेगी नहीं, कांटे में उसका खाना कुछ लगा होता है उसे खाने के लिए, जैसे ही मुंह खोलती है कांटा फंस जाता है मुंह में और मछली पकड़ ली जाती है। तो इसका भाव क्या है जीवन में, कि जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं, यानी बात करने के लिए मुंह तो खोलना ही पड़ता है, तो जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं बात करते हैं, कोई ना कोई शब्दों के अधीन हो जाते हैं। और अधिकतर ये होता है कि शब्द हमारे कंट्रोल में नहीं रहते और हम परिस्थितियों में फंस जाते हैं। इस कारण से कहा है साइलेंस इज गोल्ड, स्पीच इज सिल्वर। तो शब्द बोलो, यहाँ पर भी आपको एक स्लोगन मिलेगा, आप लिटरेचर में जाएंगे ना वहां पर एक स्लोगन मिलेगा, बहुत छोटा सा ही है, कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। तो बोलेंगे तो तब पहले तो मन में विचार आएंगे, तो मन में अगर सकारात्मक विचार होंगे तो मीठा भी बोलेंगे, कम भी बोलेंगे, तो आपका मन के विचारों के ऊपर भी कंट्रोल होता चला जाएगा और वाणी पर भी कंट्रोल होगा, और जब वाणी पर कंट्रोल होगा तो कर्मों के ऊपर भी कंट्रोल होता चला जाएगा। इस कारण से देखो भगवान ने भी ना कहते हैं जीभ बनाई हुई है, तो बस ये जीभ बोलता है ना मनुष्य, इस जीभ को भी कंट्रोल करने के लिए 32 दांत, और 32 दांत के ऊपर ये होठ, इतना कंट्रोल रखा है भगवान ने बोलने के लिए। इसीलिए ये बोलना इसके ऊपर बहुत 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 कुछ निर्भर करता है। मीठा बोलो, बस जितना जितना मनुष्य मीठा बोलता है उतना उतना वो अपने मित्र की श्रेणी बढ़ाता चला जाता है, और जहां पर मित्रों की श्रेणी होती है दुश्मन कम होंगे, जीवन सुखी सुखमय होता जाएगा। इसी प्रकार से मनुष्य, पतंग उड़ाई है कभी आप लोगों ने? उड़ाई होगी। पतंग कब ऊपर जाती है? आप पतंग उड़ाने पहुंचे जब हवा, अगर पवन नहीं होगा पतंग भी बहुत ऊपर नहीं जाएगी। इसी रीति से जीवन रूपी पतंग जो है ना वो हमारी बस तब ऊपर जाती है जब थोड़ा प्रॉब्लम तूफान होते हैं। बस तूफान होगा, इसीलिए कहा गया है तूफान को तोहफा समझो। जीवन में परीक्षाएं आती हैं, समस्याएं आती हैं, तूफान, उससे हम घबराएं नहीं, वो हमें तोहफा ईश्वर की तरफ से नजराना आया है, उससे हम बहुत कुछ सीखते हैं और उससे सबक लेके आगे आगे बढ़ते जाते हैं, तो जीवन में सफलता और आती चली जाती है। इसीलिए मुंह से मीठा बोलना और जीवन में परीक्षाएं आना, बस इससे मीठा बोलते जाएंगे परीक्षा भी बड़ी होगी, वो सूली से कांटा हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसीलिए कहा गया जवान है ना ये टंग, टंग के लिए क्या कहा है, टंग हैज गॉट नो बोन बट इट ब्रेक मैनी बोन्स, यानी जवान में हड्डी नहीं होती है लेकिन बहुतों की हड्डियां तोड़ देती है। बस कड़वा बोला आपने, लड़ाई करवा दी, झगड़ा हो गया और बस बहुत नुकसान हो जाता है। इसीलिए ये जीवन जीने की कला, सोचने के ऊपर बोलना करना ये सब कैसे निर्भर, और परीक्षाएं जो हैं उन परीक्षाओं को हम कैसे पार करते चले जाते हैं वो आप ये देखते जाओ। और क्या है देखो, 5 उंगलियां तो हाथ में भी बराबर भगवान ने नहीं बनाई है, इसीलिए कोई मनुष्य छोटा है कोई बड़ा है, गरीब है अमीर है, कोई दुखी है कोई सुखी है, आदि आदि। लेकिन हर परिस्थिति में हमारी सोच महान रहे, सोचना तो हमारे ढंग के ऊपर है ना। भगवान ने तो सब मनुष्यों को एक जैसा बनाया, 2 आंख 2 कान 2 नाक बिल्कुल एक जैसा, फिर हम अपने पुरुषार्थ से जैसा बनना चाहें वैसा बन जाते हैं। तो देखो ये आदमी एक चला तो रहा है साइकिल, लेकिन साइकिल चलाते चलाते भी ना क्या कर रहा है, बस ये कर रहा है अपने भविष्य का, एक दिन ऐसा होगा मैं कार का मालिक बनूंगा, कार में ये करूंगा सैर, विचार महान। तो ऐसे आप यहाँ पर आए हो ना, तो यहाँ का लक्ष्य क्या दिया जाता है ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का, आप परिचय से तो आए होंगे, यहाँ पर मनुष्य से देवता बनने की शिक्षा दी जाती है, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की शिक्षा। तो ये विचार की महानता आप सदैव कायम रखना। अभी आप लौट के भी जाओ ना, भाई हम यहाँ से क्या सीख के आए हैं, मुझे नर से नारायण बनना है, हर बहन ये सोचे मुझे नारी से लक्ष्मी बनना है। तो जैसे ही जब उनकी पिक्चर माइंड में होगी मनुष्य वैसा पुरुषार्थ करता है। कोई मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जाता है ना स्टूडेंट, तो उसके माइंड में डॉक्टर की पिक्चर होती है मेडिकल, तो फिर उसका व्यवहार पढ़ाई लिखाई ढंग सब वैसा होता चला जाता है। जैसा लक्ष्य वैसा लक्षण। आप भी यहां से जब जाएंगे तो बस ये लक्ष्य लेके जाना है, मुझे मनुष्य देवता बनना है, देवी बनना है, नारायणी बनना है, लक्ष्मी बनना है, भाई सोचे नारायण बनना है। इस रीति से जितना लक्ष्य महान होगा उतना आप और आगे बढ़ते चले जाएंगे। क्यों? इस लक्ष्य को सदा बुद्धि में रखना। अक्सर करके क्या है, हम कहते हैं क्या करें, भूल जाते हैं, कई बात याद नहीं रहती। हर मनुष्य के मतलब ना जो है दो शक्तियां होती है, जब से मनुष्य पैदा होता है उस पे दो शक्तियां होती हैं। कौन सी दो शक्तियां? एक है याद रखने की शक्ति, एक है भूलने की शक्ति। ये दो शक्तियां हर मनुष्य पर है, याद रखने की और भूलने की। लेकिन ट्रेजेडी क्या है लाइफ की, कि वो जो बात याद रखना चाहता है वो तो जाता है भूल, और जो बात भूल जानी चाहिए वो उसे बरसों तक याद रखता है। बस यही जीवन की विडंबना है। मानो आपने मेरे साथ, आप मेरे साथ बहुत अच्छे हो, 10 बार आपने बहुत अच्छा व्यवहार किया, 1 बार आपका व्यवहार खराब हो गया, बस मेरे मन में वही बात बार बार याद आती रहेगी, इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, नहीं करना चाहिए था। तो किसी की भी ना बात को, गलती को याद रखना ये गलत बात है। उसको भूल जाओ, गलती को भूल जाओ, दूसरे के एहसान को हमेशा याद रखो। इसीलिए याद रखना और भूलना, इस कला को कैसे यूज करना है वो अपने को अच्छी तरह याद रहनी चाहिए। और जब याद रहेगी वो कब रहेगी? हम भूल कब सकते हैं? जब हमारे अंदर क्षमा करने की शक्ति होगी। किसी ने अपमान कर दिया, कुछ कर दिया, गलत बात बोल दी, भूल नहीं पाते, अगर हम उसे क्षमा कर दें, चलो एक बार ऐसा हो गया, बात खत्म हो गई। हर व्यक्ति को क्षमा कर दो, क्षमा करो और क्षमा मांग लो, जीत है इसमें, हार नहीं। क्षमा वीरों का भूषण है, कायर का व्यवहार नहीं। जो कायर होगा वो क्षमा नहीं कर पाएगा, जो वीर होगा वो क्षमा कर पाएगा। अब आप अपने में देखो, आपके ऊपर है। अगर आप किसी व्यक्ति को जिसके प्रति आपकी लाइकिंग नहीं है, आप उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हो, उसको देखते ही आपके मन में कई प्रकार की दुर्भावनाएं, क्रोध की, बदले की भावना, ये सब पैदा होने लगती हैं, इसका मतलब आपने क्षमा नहीं करा, इसका मतलब आप कायर हो। महान आत्माएं जो होती हैं, आप महान जगह में आए हो, तो अपना ये कमजोरी का गुण छोड़ के जाए और ये महानता का गुण लेके जाए। जो भी महान आत्माएं होती हैं वो क्षमा स्वरूप होती हैं, क्षमा कर देती हैं दूसरे की गलती को। इसीलिए एक ये जितना हम धारण करके जाएंगे उतना हम, हमारे अंदर निगेटिव चिंतन हमारा ही बंद हो जाएगा। नहीं तो किसी व्यक्ति को देखा और बार बार उसने 10 साल पहले भी कोई घटना हुई होगी, उसे देखकर वही घटना याद आ जाएगी। निगेटिव चिंतन तो हमारा चला ना, हमारा हुआ, उसका तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारा चलता रहा, हमारी टाइम एनर्जी सब वेस्ट हुई और नकारात्मकता हमारे जीवन में आती रही। इसने आवश्यकता ये है हम अपना चेहरा देखें, अपने को देखें। बड़ा अच्छा कहा है, हमें दूसरे की गलती तो एकदम दिख जाती है, अपनी गलती नजर नहीं आती। जिंदगी भर, 2 लाइन किसी ने कही है, गौर से सुनिएगा, कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। आईना होता है ना मिरर, तो धूल चेहरे पर थी, हमारी गलती हमारी थी, लेकिन हम दूसरे के अंदर देखते रहे, इसके अंदर ये मिस्टेक है, ये गलती है, और उसको हम करेक्ट करने का पुरुषार्थ करते रहे, अपनी तरफ हमने नहीं देखा। आवश्यकता है पहले अपने अंदर झांक कर देखने की, और जितना हम अपने अंदर झांक कर देखते जाएंगे उतना उतना क्या होता जाएगा, हमारा चिंतन खुद सकारात्मक होता जाएगा, पॉजिटिव। यहाँ पर यही सिखाते हैं कि अपने अंदर झांक करके देखो, फिर हर चीज में लिए सोचो, पहले सोचो समझो और फिर करो। टेक टाइम टू थिंक, आजकल हर एक कोई हेल्थ कॉन्शियस है, चाहते हैं अभी बीमारी शरीर में ना आए, तो बहुत प्राणायाम आसन भी सिखाते हैं टीवी के अंदर भी ना, ये प्राणायाम आसन की बात काफी आती रहती है। तो टीवी में ऐसे सिखाया जा रहा था कि प्राणायाम करो सिर नीचे पैर ऊपर, तो एक आदमी भी बैठ करके देख रहा था और बस देखा और खुद ही तभी प्राणायाम करने लगा। रिवॉल्विंग चेयर है, पहिए वाली कुर्सी, अगर उसी के ऊपर ही सीधाई करने लगेगा तो क्या होगा, गिर जाएगा। तो टेक टाइम टू थिंक। नकल के लिए भी क्या चाहिए, अकल चाहिए। खाली ब्लाइंडली नकल ना करते चलें किसी की, उसको देखो सोचो समझो और फिर उसे हम अपने जीवन में अपनाएं। और साथ साथ क्या करें, टेंशन तो हर एक को आता है, परिस्थितियां होती हैं, टेंस मोमेंट। देखो आजकल 50-50 ओवर के भी मैच होते हैं, 20 ओवर के भी क्रिकेट मैच होते हैं। तो एक ऐसा इंडिया पाकिस्तान का फाइनल मैच होने वाला था 50 ओवर का, हाँ, एक आदमी ने ऑफिस से छुट्टी ली, बहुत क्रिकेट प्रेमी था कि भाई आज इस मैच को देखना है, ऑफिस से छुट्टी ली, टीवी ऑन किया, आराम से सिगरेट मुंह में लगाया, पैर फैलाए और टीवी देख रहा था, मैच का आनंद ले रहा था। इतनी देर में उसकी मिसेज आई युगल, छोटा बच्चा था गोदी में, मुंह में दूध की बोतल लगी हुई थी कि भाई इसको ये दूध बोतल से पिलाते भी रहो और मैच भी देख लो, मैं तब तक अपना घर का काम कर लेती हूँ। तो उसने कहा ठीक है, उसने बच्चे को ले लिया और बस बच्चा भी दूध पीता रहा, धीरे धीरे बच्चा सो गया। तो जब बच्चा सो गया तो उसने बच्चे को उठा के पास में चारपाई पर सुला दिया और मैच देखने लगा। मैच बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेज में पहुंच गया, 45 ओवर हो गए, बहुत अच्छा, कोई भी पार्टी जीत सकती थी। दो तीन चार ओवर बचे हुए थे, चार पांच ओवर, दो तीन विकेट थे, बड़ा इंटरेस्टिंग मैच एक एक बॉल पर हो रहा था। इतनी देर में बच्चा रोने लगा, अब उसका ध्यान तो सारा मैच की तरफ था, बच्चा जग गया रोने लगा। तो पहले तो उसने कोशिश करी बच्चे को थपथपा के सुलाने की, बच्चा नहीं थपथपाया नहीं सोया। तो अब जल्दी में क्या करा उसने, देखिए दूध की बोतल तो अपने मुंह में लगा ली और सिगरेट बच्चे के मुंह में लगा दिया, देख रहे हैं ना। टेंशन स्ट्रेस में कभी भी कोई काम ठीक नहीं होता है। हमें भी जीवन में कभी भी तनाव आता है ना, तो तनाव का क्षण में कभी भी हम कोई डिसीजन न लें, मेजर डिसीजन न लें, और तनाव के पीरियड को बीत जाने दें। जब दिमाग ठंडा हो जाए तब जीवन का कोई भी निर्णय लेते हैं वो सही निर्णय होता है। ये तो एक हंसी के माध्यम से आपको ये बताया गया, लेकिन हम सभी के साथ जीवन में ये घटना होती है। तनाव अगर आता है मुंह से अपशब्द निकल जाते हैं, बहुत नुकसान हो जाता है, इसलिए इस परिस्थिति से हम सब सदा बचते रहें। अभी आप यहाँ आए हो ना, तो यहाँ से क्या लेकर के जा रहे हो, अभी आप तो ट्रेन में बस में, हो सकता है कोई फ्लाइट से, अभी आप सब उड़ते हुए जाना, फ्लाइट में जाना। आप सोचोगे कैसे फ्लाइट में जाएंगे, नहीं, जब आप यहाँ आए हो तो जीवन की परिस्थितियों से बचने के लिए उड़ना। कैसे उड़ना, यहाँ आपको दो पंख दिए गए हैं और वो दो पंख कौन से हैं, एक ज्ञान एक योग। ज्ञान और योग के इन दो पंखों से ना आप बुद्धि को उड़ाते हुए ले जाएंगे। तो जीवन में जैसे पक्षी होता है या प्लेन में जब जाते हैं, नीचे पुल भी टूटा हो, रोड टूटी हो, पानी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसका फर्क नहीं पड़ता, प्लेन ऊपर से सीधा चला जाएगा और आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। ऐसे ही जब जीवन में हम उड़ना सीख जाते हैं, ज्ञान और योग के दो पंखों से हम उड़ना सीख जाते हैं, तो परीक्षाएं तो आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी लाइफ की, लेकिन वो लाइफ की प्रॉब्लम आपके मार्ग में बाधक नहीं बनेंगी और उनको देखते हुए भी आप सीधा उनसे पार होके उड़ के चले जाएंगे। तो ये ज्ञान और योग के दो पंखों को आप जरूर से यहाँ से लेके जाओ। और इसके लिए क्या करो, अपने माइंड को मन को आप मजबूत करते रहो। और क्या, वो तो योग में आपको बताया ही जाएगा, योग के और जो लेक्चर होंगे ना उनमें आपको बताया जाएगा कैसे अपने मन को शक्तिशाली और स्टेबिलाइज आप कर सकते हैं राजयोग मेडिटेशन के द्वारा। और जितना जितना मन आपका शक्तिशाली होता जाएगा उतना उतना आप में और बल भरता चला जाएगा। एम्प्टी योर माइंड। सारा दिन किस बात पर निर्भर करता है, रात्रि को हमारी नींद की क्वालिटी कैसी रही। आप सोने जाते हैं ना, उस समय सारे दिन भर की पुरानी बातें याद आ जाती हैं। आप क्या करो, सोने से पहले अपना ये खोपड़ी का ये ढक्कन खोल दो, जैसे इसने खोला है। खोल सकते हैं ऐसा ढक्कन? ऐसा कोई ढक्कन होता है ऊपर हमारी खोपड़ी में, सिर में? इसका भाव क्या है कि रात को सोने से पहले अपने जो भी आपके ऐसे विचार हैं, वेस्ट थॉट्स हैं, इरिटेशन, व्यर्थ विचार हैं, क्रोध वाले विचार हैं, अहंकार के हैं, निराशा के, उन सब विचारों को कचड़े के बॉक्स में डाल दो। हे प्रभु, अब मैं आपकी गोदी में आकर के आत्मा सोती हूँ या सोता हूँ, मेरा शरीर यहाँ बिस्तर पर विश्राम करता है, मैं आत्मा, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, आपकी गोदी में आके मैं आत्मा विश्राम करता। आप शरीर से अपने को डिटैच करके और तब सोएंगे ना, तो आप देखेंगे विद इन नो टाइम नींद आ जाएगी। और नींद की क्वालिटी ऐसी होगी कि चार पांच घंटे की नींद में ही आठ घंटे की फ्रेशनेस का असर महसूस होगा। तो इसीलिए रात को सोने से पहले जरूर सारे दिन की अपनी थोड़ी सी एनालाइज करो, क्या क्या व्यर्थ हुआ, उन सबको अगर लिखना चाहें लिख करके, चाहे फाड़ दो, प्रभु के अर्पण करके सोएंगे तो बस बहुत अच्छी नींद आएगी। अभी आप जब यहाँ से जाएंगे ना, यहाँ तो ये बातें सुन रहे हैं आपको बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जब आप यहाँ से जाएंगे तो जरूरी नहीं कि आपकी इतनी खुशी कायम रहे। तो क्या करेंगे, यहाँ जाने से पहले आप यहाँ से कुछ लिटरेचर, कोई ऑडियो विजुअल कैसेट, कोई ये वीडियो कैसेट्स, ये सब जरूर ले जाना थोड़ा सा। और क्या होगा, अभी भी ये जो सारे लेक्चर है ना, ये आपके सारे रिकॉर्ड हो रहे हैं, ये सीडी अवेलेबल होगी तो उस सीडी को भी ले जा सकते हैं। और प्री रिकॉर्डेड सीडीज बहुत अच्छी हैं मेडिटेशन की, गीतों की, वो सब अपने साथ जरूर ले जाना। उससे क्या होगा कि कभी आपका जब मूड ऑफ हो, कोई प्रॉब्लम हो घर में, कोई समस्या हो, उस समय ये सीडी और कैसेट और वीडियो ये लगा देंगे, फिर से आपका मूड एकदम खुशनुमा हो जाएगा, वो परिस्थिति चली जाएगी, बदल जाएगी और आपका मूड फिर से हैप्पी हो जाएगा। इसीलिए ये चीजें, ये साधन हैं, जिन साधनों को आप ले जाएंगे। और अब ये लगभग सेकंड लास्ट, अंतिम स्लाइड है सेकंड लास्ट, कि हमारे अंदर खजाने तो बहुत हैं, जो आज सुबह आपको बताया ना, आत्मा प्रेम स्वरूप है, शांति, आनंद, ज्ञान, शक्ति स्वरूप है, लेकिन व्यवहारिक जीवन में देखने में आता है कि ऐसा नहीं है, शांति की बजाय अशांति है, सुख की बजाय दुख है, आदि आदि। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें जो ताला है, चेन है, लेकिन चेन का एक कड़ी टूटी हुई है ये, और उसके कारण से क्या है, अंदर के खजाने, माया, कमजोरियां हमारी हैं, वो सब लूट करके ले जा रहे हैं अंदर के खजाने। तो इसीलिए अभी आप क्या करिए, अभी अपने को इतना शक्तिशाली बनाइए, जाने से पहले क्या करना, एक दिन 5-10 मिनट एकांत में बैठना, खाली हो गया, और अपने अंदर झांकना, ऐसी कौन सी बात है जो मेरे अंदर के खजाने को लूट रही है। तो आप पाएंगे, कोई कहेगा मेरे अंदर क्रोध है, क्रोध की वजह से मन की शांति नहीं होती, कोई कहेगा ईर्ष्या है मेरे अंदर, कोई कहेगा सहन शक्ति का अभाव है। अपने अंदर हम झांक के खुद अपनी कमजोरी को देख सकते हैं। तो क्या करिएगा, एक कागज का टुकड़ा लीजिएगा और उस पर भगवान के नाम पर दो लाइन लिखिएगा, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे शिव बाबा, आज मैं अपनी इस कमजोरी का दान यहाँ पर दे करके जा रहा हूँ या जा रही हूँ, क्रोध का दान देके जा रही हूँ, ईर्ष्या का, घृणा का, जो आप में कमी हो, भले नीचे नाम लिखो या ना भी लिखो, लेकिन उस कमी का दान करके बाबा के कमरे में जाओ या भंडारी जो रखी रहती है इसके अंदर डाल दो। और हमारा तो ये अनुभव है, जो यहाँ आते थे 15-15 पैकेट सिगरेट के पीते थे, सिगरेट नहीं छोड़ सकते जीवन भर, सच्चे दिल से यहाँ प्रभु के अर्पण करके गए, हे भगवान, आज मैं अपनी इस कमी को छोड़ के जा रहा हूँ। और आज तक उनके पत्र आते हैं कि इतने साल हो गए तब से मैंने सिगरेट को हाथ नहीं लगाया, छुआ नहीं। जो भी कमजोरी है आप सच्चे दिल से अंदर झांक करके तीर्थ स्थल पर आए हैं, भगवान की धरनी पर आए हैं, इसने उसे छोड़ करके जरूर जाना, अपने अंदर शक्तियां भर के जाना। और ये आज का अंतिम स्लाइड है, गणपति बापा मौर्या, ये तो ये सकारात्मक चिंतन की कला का प्रतीक है गणपति बापा। देखो सब जानते हैं ना, जब भाई कार्तिक और गणेश जी को कहा दुनिया का चक्कर लगा के आओ, तो कार्तिक तो दौड़ के चले गए अपने वाहन पर, और गणेश जी ने क्या करा, अपने माता पिता का ही चक्कर। यानी बुद्धि की कला, सोचने की कला, सकारात्मक चिंतन की कला, उन्होंने सोचा यही मैं चक्कर लगा लूंगा, यही मेरा विजय होगी, और वही हुआ। तो सकारात्मक चिंतन का तो गणेश जी में क्या क्वालिटी होती है, ये 6 क्वालिटी है। पहली बात, उनका सिर बड़ा है गणेश जी का, तो आप भी बड़ा चिंतन करो, छोटी छोटी बातों की बात नहीं, महान चिंतन करो, पॉजिटिव चिंतन करो। ये है गणेश जी के सिर का प्रतीक। दूसरा, कान बड़े होते हैं। कान बड़े का मतलब यहाँ जो कुछ भी सुन के जा रहे हो उसको अपने अंदर समाना, हो सकता है सारी बात से आप सहमत न भी हो लेकिन उसे सुन लो। सुनने के बाद अपने अपने शहर में जाएंगे, वहाँ सेंटर हैं, उनके कॉन्टेक्ट में रहना, जो ब्रांच है ब्रह्मा कुमारी की, उस बात को और समझने का प्रयास करना। इसीलिए भगवान ने देखो कान खुले रखे हैं, कान के ऊपर कोई ढक्कन नहीं दिया जैसे आंख के ऊपर या मुंह के ऊपर है, वही कान यानी कि खुला रहे वैसा रहे। और तीसरी बात, छोटी आंख। छोटी आंख इस बात का प्रतीक है, योग युक्त स्थिति का प्रतीक, कि हम ध्यान में रहें, योग कर्म योगी बने, कर्म भी करें और योग भी करें, ये कर्म योग का प्रतीक है छोटी। आप घर में आरती करते हो ना, पूजा करते हो तो आंख बंद होने लगती है अपने आप ही, आरती करो, वो कर्म और योग का प्रतीक। तो हमेशा जीवन में कर्म योगी, कर्म करते करते भी ईश्वर की स्मृति रहे, भोजन बनाओ ईश्वर की स्मृति में, कपड़े धो ईश्वर की स्मृति में, तो वो कर्म योग का प्रतीक। चौथी बात, लंबी नाक। इस बात का प्रतीक है कि नया सीखने का कुछ, जैसे कोई जानवर होते हैं ना, कुत्ता हो या सूंघता 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 जाएगा और जहां कोई उसका खाने की चीज मिली फट से पकड़ के मार के खा लेगा, ऐसी लंबी नाक इसी बात का प्रतीक है कि हर बात को हम यहाँ पर सीखने का प्रयास करें। समझ न भी आए कोई बात नहीं, डायरी में नोट कर लो, अलग से पूछ लो, लेकिन करो जरूर उसे सीखो। और छोटा मुंह किस बात का प्रतीक है, छोटा मुंह इस बात का प्रतीक है कम बोलने का। इसीलिए ये सुनो, कहते हैं जितना सुनो उससे आधा बोलो, दो कान हैं मुंह एक है, तो इसीलिए ये। और अंतिम ये है, बड़ा पेट। पेट किस बात का प्रतीक है, बड़ा पेट समाने का, शक्ति का प्रतीक। जैसे घर में ना, इसमें भोजन समा जाता है, घर की कोई बात होती है, हम सारे मोहल्ले में फैलाते नहीं, घर की बात है हम समा लेते, हमारी बच्ची की बात है, लड़के की बात है, कोई गलत बात है, ऐसे ही समाने की शक्ति अगर हमारे अंदर जितनी होगी उतना उतना हम आगे बढ़ते जाएंगे। और इस बात को मैं यहाँ पर एक बात के साथ समाप्त करना चाहूंगा कि यहाँ पर आप हो अभी हा? ये 3 दिन तो इसीलिए इसके अंदर आप ये देखना कि जो मैं सीख रहा हूँ या सीख रही हूँ वो कितने तक मैंने अपने अंदर धारण किया है। आपको डायरी मिली हुई है ना, तो डायरी में बस लिखते जाओ, उसको पढ़ो थोड़ा कमरे में जाके, और उसको जितना अभ्यास करेंगे सीखते जाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आपका जीवन सदा मंगलमय और शुभ हो, खुशी जीवन में सदा रहे, मैं यहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।